पृष्ठ संख्या 13, समकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। समकालीन इतिहास आधुनिक इतिहास से भिन्न है, इसलिए आधुनिक इतिहास पर थोड़ा दृष्टिपात कर लेना उपयोगी होगा। याद रहे कि कोई भी ऐतिहासिक काल सर्वथा नया नहीं होता, हर ऐतिहासिक काल में उससे पहले के काल के बहुत से तत्व समाये होते हैं। उसमें हमेशा सातत्य के अनेकानेक तत्व होते हैं। इसके लिए अनुवर्ती काल में क्या हुआ, कुछ नया है, इसे ठीक से समझने के लिए पूर्ववर्ती काल को जानना जरूरी है। यदि हम विश्व को एक समग्र दृष्टि से देखें तो कहा जा सकता है कि इतिहास का आधुनिक काल 15वीं-17वीं सदियों में आरंभ हुआ। कहने की जरूरत नहीं कि यह कथन विश्व के सभी क्षेत्रों और देशों पर लागू नहीं होता। इन सदियों के दौरान पश्चिमी यूरोप के कुछ देशों ने मध्यकाल का केंचुल उतारना शुरू कर दिया था। पुनर्जागरण, धर्म सुधार, आधुनिक विज्ञान का आरंभ, यूरोपीय लोगों द्वारा नए देशों और नए मार्गों, विशेषकर नए समुद्री मार्गों की खोज, जिससे अमेरिकी महाद्वीपों तथा एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उपनिवेश बसाए गए तथा राष्ट्र राज्यों का उदय, ये संक्रमण की इन सदियों की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं थी। ये तमाम घटनाएं लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के संगठन में एक बुनियादी परिवर्तन से जुड़ी हुई थी। इस परिवर्तन की विशेषता यह थी कि सामंती व्यवस्था बिखर गई और उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था प्रतिष्ठित हुई, जिसे पूंजीवाद कहते हैं। इन घटनाओं के फलस्वरूप विश्व का एक बहुत बड़ा भाग आपस में जुड़ गया। इस जुड़ाव को लाने में बहुधा पशुबल का प्रयोग किया गया और अफ्रीका के मामले में तो लोगों को गुलाम बनाने का भी सहारा लिया गया। एक अन्य घटना जिसका दौर 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ और जिसके फलस्वरूप और भी बुनियादी परिवर्तन हुए, औद्योगिक क्रांति थी। इसका आरंभ इंग्लैंड में माल बनाने के लिए यंत्रों के उपयोग से हुआ। 19वीं सदी के अंतिम चरण तथा औद्योगिक क्रांति विभिन्न परिणामों में यूरोप के अनेक देशों और उत्तर अमेरिका में, खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल चुकी थी। जिन देशों में औद्योगिक क्रांति फैली, उनका सामाजिक तथा आर्थिक जीवन बिल्कुल बदल गया। आर्थिक प्रवृत्तियों का केंद्र गांवों से खिसककर शहरों में चला गया। कृषि के स्थान पर औद्योगिक उत्पादन और उससे संबंधित कार्यकलाप का बोलबाला हो गया। इन देशों की संपत्ति का अधिकाधिक भाग इन्हें खेतीबाड़ी की बजाय उद्योगों से प्राप्त होने लगा। समाज में दो नए वर्गों का जन्म हुआ, एक था पूंजीपति या बुर्जुआ वर्ग, जो उद्योगों का स्वामी था और जिसका वाणिज्य व्यापार पर नियंत्रण था। दूसरा था श्रमिक वर्ग अथवा प्रोलिटेरियत, इससे मजदूरी के एवज में काम लिया जाता था। साथ ही यह यूरोप के औद्योगिकृत देशों के श्रमिक वर्गों की दुर्गति का काल था। वे लोग श्रमिक संघों में संगठित होने लगे, यद्यपि कई देशों में श्रमिक संघ बनाना अवैध था। समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में वे एक अलग राजनीतिक शक्ति के रूप में भी संगठित होने लगे। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन का जन्म हुआ, जिसके तहत न केवल श्रमिकों की आर्थिक मांगों की पूर्ति का प्रयत्न किया गया, बल्कि श्रमिकों को स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था को ही उखाड़ फेंकने के लिए लामबंद किया जाने लगा। समाजवादी विचारधारा को एक शास्त्रीय रूप देने में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने यूरोप के कई देशों में समाजवादी आंदोलन का संगठन करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाजवादी विचार संयुक्त राज्य में भी पहुंचे। 1864 में इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का गठन किया गया, जो फर्स्ट इंटरनेशनल या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से प्रसिद्ध है। जब 1876 में उसे औपचारिक रूप से समाप्त किया गया, तब तक तो यूरोप के कई देशों में समाजवादी दल गठित हो चुके थे। उनमें से कुछ के समर्थकों की संख्या काफी बड़ी थी। 1871 में समाजवादी विचारों से प्रेरित प्रथम क्रांति पेरिस में हुई। इसे इतिहास में पेरिस कम्यून के नाम से जानते हैं। यद्यपि यह क्रांति मुश्किल से 3 महीने कायम रह सकी, तथापि इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। 1889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सेकेंड इंटरनेशनल का गठन किया गया और विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को उससे जोड़ा गया। इस बीच कई देशों में औद्योगिक क्रांति तथा पूंजीवादी शोषण के कतिपय घोर कुप्रभावों से श्रमिकों की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए। इन परिवर्तनों के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे थे। हम ऊपर बता चुके हैं कि मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर संक्रमण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि राष्ट्र राज्यों का गठन हो रहा था। यूरोप में राष्ट्र राज्यों का गठन 19वीं सदी के दौरान जारी रहा, बल्कि कुछ देशों के मामले में तो यह सिलसिला 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक भी कायम रहा। राष्ट्रवाद यूरोप के इतिहास में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। कई राष्ट्र कई राज्यों में बटे हुए थे, जैसे जर्मनी। इसके अलावा कई राष्ट्र ऐसे राज्यों में बटे हुए थे जिनमें से कुछ विदेशी शासन के अधीन थे। ऐसा ही एक राष्ट्र था इटली। इन सभी राष्ट्रों ने स्वयं को स्वतंत्र राज्यों में एकीकृत और संगठित करने का प्रयत्न किया। यूरोप के कई देशों में राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में एक और भी बड़ा परिवर्तन आया। प्रायः सभी यूरोपीय देशों की राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक तंत्र तथा निरंकुशतापूर्ण थी। 17वीं सदी के गृह युद्ध के बाद केवल इंग्लैंड की संसद ही सर्वोच्च स्थापित कर पाया था। 18वीं और 19वीं सदियों के दौरान लोकतंत्र तथा जनप्रभुसत्ता के विचारों ने जोर पकड़ा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसने स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के सिद्धांतों की उद्घोषणा की। इसी क्रांति में सर्वप्रथम मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों का ऐलान किया गया। इसके पूर्व उत्तर अमेरिका में अंग्रेज उपनिवेशियों ने स्वतंत्रता की घोषणा जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं और उनके कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनसे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। घोषणा में यह भी कहा गया था कि जनता को अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने का अधिकार है। उपनिवेशी लोग अपने स्वातंत्र्य युद्ध में सफल रहे थे और उन्होंने एक नए गणतंत्र की स्थापना की थी, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रवाद के साथ ही लोकतंत्र 19वीं सदी के यूरोप के इतिहास में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। अधिकतर यूरोपीय देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए कई क्रांतियां और आंदोलन हुए। यद्यपि यूरोप के प्राय सभी देशों में राजनीतिक शासन व्यवस्था ही कायम रही, तथापि कई राजतंत्र संवैधानिक थे, अर्थात उनका संचालन संविधान के अनुसार होता था और वास्तविक सत्ता संसद के हाथों में थी। किंतु अधिकांश देशों में मताधिकार सबको प्राप्त नहीं था और बहुत से पुरुष तथा सभी स्त्रियां इस अधिकार से वंचित थे। ये तमाम परिवर्तन यूरोप तथा उत्तर अमेरिका तक सीमित थे, बल्कि यूरोप में भी कुछ ऐसे देश थे जो इन नई बातों से अछूते रहे। दुनिया के बाकी हिस्सों में ना तो कोई औद्योगिक क्रांति हुई 19वीं सदी के अंतिम दशकों में जापान को छोड़कर, और न उपर्युक्त किस्म के सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन हुए। नए जल थल मार्गों की खोज के परिणाम स्वरूप दोनों अमेरिकी महाद्वीपों तथा एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशीकरण का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। 19वीं सदी के अंतिम 3 दशकों के दौरान साम्राज्यवाद की एक नई लहर उठी और उस सदी का अंत होने के पूर्व ही दुनिया का लगभग हर हिस्सा चंद यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अधीनता में आ गया। कुछ देशों में साम्राज्यवाद का प्रतिरोध काफी तीव्र रहा और इसलिए उन पर वास्तविक कब्जा करने में साम्राज्यवादी देशों को ज्यादा समय लगा। भारत जैसे कुछ देशों पर साम्राज्यवादी विजय इससे भी पहले संपन्न हो चुकी थी। विश्व के जो देश आज तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं, उनका आर्थिक शोषण तो साम्राज्यवादी देश तब भी करते थे जबकि वे प्रत्यक्ष साम्राज्यवादी शासन में नहीं थे। उपनिवेशों की जनता साम्राज्यवादी शासन का विरोध आरंभ से ही करती रही। 19वीं सदी के समाप्त होने के पूर्व भी उपनिवेशी प्रभुत्व के अधीन आए देशों में बहुत प्रबल शक्तियां उभरने लगी थीं, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने का प्रयत्न किया। यह प्रयत्न इसलिए नहीं था कि उन देशों में फिर से प्रागोपनिवेशिक व्यवस्था कायम की जा सके, बल्कि इसलिए कि उन्हें स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्रों का रूप दिया जा सके, उनका औद्योगिकीकरण किया जा सके और उनके समाजों की रचना समानता के सिद्धांत के आधार पर किया जा सके। जो दुनिया 19वीं सदी में विकसित हुई, उस 20वीं सदी में सामने आने वाली दुनिया से बहुत भिन्न थी, खासकर उस दुनिया से जो हमारे आज के जीवन में देखने को मिल रही है। फिर भी याद रखना चाहिए कि जो शक्तियां 20वीं सदी की दुनिया का निर्माण करने वाली थी, उनमें से कुछ एक 19वीं सदी से ही उभरने लगी थी।